नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवली निगम। नेपाल में संसदीय चुनावों में बालेंद्र शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने प्रचंड जीत की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में दिल्ली मेट्रो के दो नए कॉरिडोर सहित 33,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर के समारोहों को संबोधित करेंगी। युद्ध शुरू होने के बाद से खाड़ी देशों से 52,000 से अधिक भारतीयों को स्वदेश लाया गया। और आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। अब समाचार विस्तार से। नेपाल में बालेंद्र शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आरएसपी संसदीय चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद सरकार बनाने के लिए तैयार है। रैपर से राजनेता बने 35 वर्षीय बालेंद्र बालिन नाम से लोकप्रिय हैं। उन्होंने झापा 5 निर्वाचन क्षेत्र में 4 बार प्रधानमंत्री रहे केपी शर्मा ओली को हराया। आरएसपी ने कल रात तक घोषित 97 में से 77 सीटें जीती हैं। इनमें काठमांडू जिले की सभी 10 सीट शामिल हैं। पार्टी 48 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव के सफल आयोजन के लिए नेपाल की जनता और सरकार को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि एक घनिष्ठ मित्र और पड़ोसी के रूप में भारत नेपाल की जनता तथा उसकी नई सरकार के साथ मिलकर शांति, प्रगति और समृद्धि की नई ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में लगभग 33,500 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। इसमें दिल्ली मेट्रो की 18,300 करोड़ रुपए की परियोजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री दिल्ली मेट्रो के 2 नए गलियारों का भी शुभारंभ करेंगे। इनमें मजलिस पार्क और मौजपुर बाबरपुर के बीच 12 किलोमीटर से लंबे पिंक लाइन गलियारा और दीपाली चौक से मजलिस पार्क के बीच लगभग 10 किलोमीटर लंबा मेजेंटा लाइन गलियारा शामिल है। एक रिपोर्ट।
इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली मेट्रो के चरण 5A के तहत 16 किलोमीटर से अधिक लंबाई वाले 3 नए कॉरिडोर की आधारशिला भी रखेंगे। ये कॉरिडोर हैं आरके आश्रम मार्ग से इंद्रप्रस्थ, एयरो सिटी से इंदिरा गांधी एयरपोर्ट टर्मिनल 1 और तुगलकाबाद से कालिंदी कुंज। इसके अलावा प्रधानमंत्री जनरल पुल रेजिडेंशियल एकोमोडेशन GPRA पुनर्विकास योजना के तहत 15,200 करोड़ रुपए की लागत की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। ये परियोजनाएं सरोजनी नगर, नेताजी नगर, कस्तूरबा नगर और श्रीनिवासपुरी जैसे प्रमुख स्थानों पर फैली हुई हैं। ये GPRA कॉलोनियों के आधुनिकीकरण और सरकारी कर्मचारियों तथा प्रशासनिक कार्यालयों के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं तैयार करने संबंधी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का हिस्सा है। पुनर्विकास योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए 9,350 से अधिक आधुनिक फ्लैट उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके साथ ही कार्यालय के लिए लगभग 48 लाख वर्ग फुट स्थान भी सृजित होगा, जिससे प्रशासनिक दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और आर्थिक लाभ की संभावना भी बढ़ेगी। भानु प्रताप सिंह के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इस वर्ष का विषय है महिलाओं और बालिकाओं के लिए अधिकार, न्याय और कार्रवाई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि महिला अधिकारों को मजबूत करने, न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने और स्त्री पुरुष समानता में तेजी लाने की भावना को दर्शाता है।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस विश्व भर में महिलाओं की उपलब्धियों और योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। यह दिवस राष्ट्रीय, जातीय, भाषाई, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक सीमाओं से परे महिलाओं की भूमिका को मान्यता देने का अवसर प्रदान करता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य समाज में महिलाओं के लिए समान अधिकार और अवसर सुनिश्चित करने पर बल देना है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 1977 में मान्यता प्राप्त यह दिवस आज लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण वैश्विक मंच बन चुका है। भारत में केंद्र सरकार भी महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न नीतियों, योजनाओं और विधायी उपायों के माध्यम से लगातार प्रयास कर रही है। देश में लड़कियों को प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कई इकाई पहल की गई है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस गिव टू गेन नामक वैश्विक अभियान के साथ मनाया जा रहा है, जो लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने में सामूहिक सहयोग की शक्ति को रेखांकित करता है। नितिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि महिलाएं समाज और राष्ट्र की नींव हैं और शिक्षित, आत्मनिर्भर तथा सशक्त महिलाएं समृद्ध और प्रगतिशील राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि आज युवा महिलाएं नए भारत के सपने को साकार कर रही हैं। राष्ट्रपति नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में एक समारोह में शामिल होंगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय आज कर्तव्य पथ पर अलग अलग क्षेत्र की महिलाओं के साथ शक्ति वॉक का आयोजन कर रहा है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय इस अवसर पर राष्ट्रव्यापी एथलेटिक्स लीग अस्मिता का आयोजन कर रहा है। इसका उद्देश्य देशभर की महिला खिलाड़ियों को जमीनी स्तर पर प्रतिस्पर्धी मंच प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना है। ये लीग एक मजबूत खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पश्चिम बंगाल दौरे पर सिलीगुड़ी में अंतर्राष्ट्रीय संथाल आदिवासी सम्मेलन में राज्य सरकार द्वारा प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने पर निराशा व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि जब राष्ट्रपति किसी राज्य के दौरे पर होते हैं तो प्रोटोकॉल के अनुसार मुख्यमंत्री को अनिवार्य रूप से उपस्थित रहना चाहिए। इस बीच उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने और सिलीगुड़ी में संथाल सम्मेलन का स्थान अचानक बदलने पर तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने के बाद से 7 मार्च तक खाड़ी क्षेत्र से 52,000 से अधिक भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाया गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सरकार पश्चिम एशिया खाड़ी के घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में और अधिक भारतीयों को वापस लाया जाएगा। भारतीय नागरिकों को दूतावास के परामर्शों का पालन करने की सलाह दी गई है। भारतीय दूतावासों ने हेल्पलाइन भी शुरू की है। मंत्रालय ने प्रश्नों का उत्तर देने के लिए नई दिल्ली में एक विशेष नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने पश्चिम एशिया क्षेत्र में 9, 10 और 11 मार्च की 12वीं की परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। बोर्ड ने बताया कि 10 मार्च को स्थिति की समीक्षा की जाएगी और 12 मार्च से होने वाली परीक्षाओं के संबंध में उचित कार्यवाही होगी। इस बीच ईरान में अमेरिका और इसराइल के हवाई हमले, मिसाइल और ड्रोन ऑपरेशन के साथ पश्चिम एशिया संघर्ष का आज 9वां दिन है। संघर्ष अब खाड़ी के कई देशों में फैल गया है।
इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइल अपने सभी लक्ष्य प्राप्त करने तक ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई जारी रखेगा। इसराइली रक्षा बलों ने ईरान में परचिन और शाहरुद में दो प्रमुख बैलिस्टिक मिसाइल उत्पादन केंद्रों पर भी हमले किए। हमलों में तेहरान के तेल भंडारण केंद्रों को भी निशाना बनाया गया। इससे पहले ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजुश्किन ने कहा कि पड़ोसी देशों को अब निशाना नहीं बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये घटनाएं सैन्य बलों के भीतर गलत सूचना के कारण हुई हैं। उधर संयुक्त राष्ट्र में ईरान के दूत अमीर सईद इरावानी ने कहा कि हमलों में 1,332 ईरानी नागरिक मारे गए हैं। उधर लेबनान में नबी चित शहर में इसराइली हवाई हमलों में 41 लोग मारे गए और 40 अन्य घायल हो गए। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत में शत्रुता तत्काल समाप्त करने और समस्या के राजनयिक समाधान की अपील की है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
ताइवान के सांसद चिया पिनचुंग ने कहा है कि भारत इस क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि ताइवान क्षेत्र शांति और समृद्धि के लिए भारत जैसे देशों के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। श्री चुंग ने कहा कि ताइवान भारत की तरह चीन के साथ भी शांतिपूर्ण संबंध चाहता है। उन्होंने कहा कि चीन की क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं गैरकानूनी हैं और ताइवान खुद पर चीन की दावेदारी स्वीकार नहीं करता। 11वां रायसीना डायलॉग कल नई दिल्ली में संपन्न हो गया। 3 दिन के इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टुब उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि थे। संवाद में इस वर्ष का विषय था संस्कार, कथन, सामंजस्य, उन्नति। चर्चा सत्रों में दुनिया भर की हस्तियों ने 6 विषयों पर अपने विचार रखे। कल विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि हिंद महासागर के देशों को भारत के विकास से लाभ होगा और भारत के साथ काम करने वाले देशों को और भी अधिक फायदा होगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने गणपति सहित माओवादी समूह की केंद्रीय समिति के सभी सदस्यों से समर्पण कर मुख्यधारा में शामिल होने की अपील की है। कल हैदराबाद में एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र में मुख्यमंत्री की उपस्थिति में 130 नक्सलियों ने अपने हथियारों के साथ सरकार के समक्ष समर्पण किया। महाराष्ट्र सरकार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आज राज्यव्यापी HPV टीकाकरण अभियान शुरू कर रहा है। 14 वर्ष तक की लड़कियों के लिए शुरू इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं की स्वास्थ्य सुरक्षा को बढ़ावा देना और सर्विकल कैंसर की रोकथाम करना है। T20 क्रिकेट विश्व कप का फाइनल आज अहमदाबाद में वर्तमान चैंपियन भारत और न्यूजीलैंड के बीच 7 बजे से खेला जाएगा। भारतीय टीम रिकॉर्ड 4थी बार जबकि न्यूजीलैंड 2री बार प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंची है। आकाशवाणी से इस मैच का आंखों देखा हाल FM रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर 6:30 बजे से प्रसारित होगा। एक रिपोर्ट।
2007 और 2024 की विश्व विजेता टीम इंडिया के पास खिताबी हैट्रिक पूरा करने वाली पहली टीम बनने का शानदार मौका है। बेहद रोमांचक सेमीफाइनल में इंग्लैंड को मात देने वाली टीम इंडिया के सामने उलटफेर करने में माहिर न्यूजीलैंड की टीम है। शानदार फॉर्म में चल रहे संजू सैमसन और जसप्रीत बुमराह पर एक बार फिर सभी की निगाहें होंगी। कप्तान सूर्य कुमार की अगुवाई में हार्दिक पांड्या, ईशान किशन, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह जहां इन फॉर्म हैं, वहीं आउट ऑफ फॉर्म चल रहे अभिषेक शर्मा और वरुण चक्रवर्ती टीम इंडिया के लिए चिंता का सबब है। टीम इंडिया इसी मैदान पर 2023 के वनडे विश्व कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हाथों मिली हार के इतिहास को खिताबी जीत के साथ बदलना चाहेगी। उधर न्यूजीलैंड की टीम ने लीग मैचों और सुपर 8 चरण में खराब प्रदर्शन से उबरते हुए सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका को एक तरफा मुकाबले में हराया था। शशांक कुमार, आकाशवाणी समाचार।
ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में आज शाम लक्ष्य सेन का मुकाबला चीनी ताइपे के सी वाई लिन से होगा। कल सेमीफाइनल में लक्ष्य ने कनाडा के विक्टर लाई को पराजित किया। लक्ष्य सेन दूसरी बार इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचे हैं। प्रकाश पाडुकोण ने 1980 में और पुलेला गोपीचंद ने 2001 में यह खिताब जीता था। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
धन्यवाद लवलीन। अमेरिका के 30 दिन की छूट पर भारत का पलटवार, कहा जहां से मन होगा वहां से खरीदेंगे तेल, लोकसत्ते की पहली खबर है। पत्र आगे लिखता है, सरकार ने कहा रूस से तेल खरीदने के लिए किसी से इजाजत की जरूरत नहीं। दैनिक जागरण ने विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के इस बयान को दिया है, कोई नहीं रोक सकता भारत की विकास यात्रा, अपने दम पर बढ़ेगा देश। गृहमंत्री अमित शाह का यह बयान कि केदारनाथ से कन्याकुमारी तक हर घुसपैठिए को बाहर निकालेंगे, अमर उजाला में है। दैनिक जागरण ने तेलंगाना के हैदराबाद में माओवादियों के आत्मसमर्पण को प्रमुखता से देते हुए लिखा है, जंगल का बदला मनोविज्ञान, थम रही बंदूकें, भरोसे की खुली राह। नेपाल में बालेंद्र शाह की जीत पर पंजाब केसरी ने संपादकीय में इसे नेपाल की राजनीति में बड़ा उलटफेर बताते हुए लिखा है कि वहां की जनता को नई सरकार से बहुत उम्मीदें हैं। पत्र के अनुसार नेपाल में स्थिर और मजबूत सरकार का बनना भारत के लिए बेहतर होगा, इसकी उम्मीद की जा सकती है। जनसत्ता की खबर है, मार्च का पहला हफ्ता 50 साल में सबसे गर्म। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, मार्च में ही तपे पहाड़ और मैदान, अगले 3 दिन तक राहत के आसार नहीं। लक्ष्य सेन के ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन के फाइनल में पहुंचने पर हिंदुस्तान ने लिखा है कि पैरों में दर्दनाक छाले और मांसपेशियों में खिंचाव के बावजूद लक्ष्य ने करियर का सबसे लंबा मैच जीता। उधर आज T20 विश्व कप के फाइनल में भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले मुकाबले पर दैनिक भास्कर की सुर्खी है, आज फिर जीत के जश्न की तमन्ना है।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल के संसदीय चुनाव में बालेंद्र शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने प्रचंड जीत की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में दिल्ली मेट्रो के 2 नए कॉरिडोर सहित 33,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर के समारोह को संबोधित करेंगी। युद्ध शुरू होने के बाद से खाड़ी देशों से 52,000 से अधिक भारतीयों को स्वदेश लाया गया है। और खेलों में ICC T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।